بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراج ایران کی آواز۔
زہرا زیدی اور ساتھی ریڈیو تہران کے سبھی شروتاؤں کی سیوا میں سلام پرستت کرتے ہیں۔ شروتاؤں، آج بھی اپنے کارکرم کا آرمبھ ہم قرآن مجید کی پوتر آیتوں کی تلاوت اور ان کے انواد سے کریں گے۔ آج کے کارکرم میں آپ سورہ اسراء کی ساتویں، آٹھویں اور نویں آیتوں کی تلاوت اور انواد سنیں گے قاری سعید توسی سے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا۔ عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات صدق اللہ العلی العظیم۔
اللہ کے نام سے جو اتیانت کرپاشیل اور دیاوان ہے، یدی تم کوئی بھلائی کرو گے تو وہ اپنے لیے ہی کرو گے، اور یدی کوئی برائی کرو گے تو وہ بھی اپنے لیے ہی کرو گے، تو جب دوسرا وچن پورا ہونے کو آئے گا तो एक शक्तिशाली गुट आएगा जिसके लोग तुम्हारे चेहरों को बुरा बना देंगे और मस्जिदुल अक्सा में प्रविष्ट हो जाएंगे जिस प्रकार से कि वे पहली बार प्रविष्ट हुए थे, और वे जिस वस्तु को भी अपने नियंत्रण में लेंगे उसे बड़ी कठोरता से तबाह कर देंगे। शायद तुम्हारा पालनहार तुम पर दया करे, और यदि तुम पलट आए तो हम भी पलट आएंगे, और हमने नरक को काफिरों के लिए एक कड़ा कारावास बनाया है। निश्चित रूप से यह कुरान सबसे सुदृढ़ राह की ओर मार्गदर्शन करता है, और भले कर्म करने वाले ईमान वालों को ये शुभ सूचना देता है कि उनके लिए बड़ा बदला है।
दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा। हमारे प्रसारण को आप शॉर्टवेव में 25 मीटर बैंड बराबर 11,860 किलोहर्ट्ज़ पर सुन रहे हैं। दोस्तों, हमारा ईमेल आईडी है hindi@ws.irib.ir। हमारी वेबसाइट का पता है parstoday.com/hi। आज शनिवार है, शरीवर माह की 19, सफर की 13 और सितंबर की 10 तारीख। हमारे आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले आप विश्व समाचार सुनेंगे, उसके उपरांत कार्यक्रम अनमोल बातें प्रस्तुत किया जाएगा। अनमोल बातें के बाद आप सुनेंगे राजनीतिक चर्चा का दैनिक कार्यक्रम, उसके उपरांत हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम ईरान भ्रमण, और सभा का अंतिम कार्यक्रम होगा उज्ज्वल भविष्य। तो दोस्तों, ये तो थी हमारे आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा, और अभी आप कुछ क्षणों में रेडियो तेहरान से विश्व समाचार सुनेंगे। बाब रेडियो तेहरान से विश्व समाचार सुनिए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आज के मुख्य समाचारों का सारांश। ईरान का कहना है कि अल्बानिया अमरीकी ड्रामे का मोहरा बना हुआ है। बहरीनी नागरिकों को 40 मिलियन मार्च में जाने की इजाजत नहीं। 40 मिलियन मार्च पर हमले की कोशिश नाकाम। राजस्थान के मुख्यमंत्री की इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना चर्चा में है। बाप मरियम मिर्दादिया और अख्तर अब्बास से विस्तार से समाचार सुनिए।
ईरान ने अपनी इंटेलिजेंस के विरुद्ध अमरीका के नए प्रतिबंधों की कड़े शब्दों में निंदा की है। अमरीकी वित्त मंत्रालय ने ईरान के इंटेलिजेंस मंत्रालय और उस विभाग के मंत्री पर अमरीका और उसके घटकों के विरुद्ध साइबर हमले के आरोप में प्रतिबंध लगा दिए हैं। अमरीकी वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को यह दावा किया कि ईरान ने हालिया सप्ताह के दौरान अल्बानिया पर साइबर हमला किया है। इससे पहले पिछले बुधवार को अल्बानिया के प्रधानमंत्री एडी रामा ने भी दावा किया था कि ईरान ने हालिया दिनों में उसके विरुद्ध एक साइबर हमला किया। इस दावे के साथ ही उसने ईरान के साथ अपने कूटनीतिक संबंधों को खत्म करने का ऐलान करते हुए कूटनीतिकों को ईरान से वापस बुला लिया था। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नासिर कनानी ने इंटेलिजेंस मंत्रालय पर अमरीका के निराधार आरोपों पर प्रतिबंध लगाए जाने की निंदा करते हुए कहा कि इस प्रकार की अमरीकी कार्रवाइयां और प्रतिबंध अतीत की भांति नाकाम रहेंगी, और इनसे देश की सुरक्षा के लिए सक्रिय लोगों के संकल्प में कोई बाधा और रुकावट पैदा नहीं होगी। उन्होंने कहा कि अल्बानिया के दावे की अमरीका की ओर से तुरंत समर्थन इस बात का सबूत है कि यह ड्रामा अल्बानिया का नहीं बल्कि खुद अमरीका का तैयार किया हुआ है, और तिराना अमरीकी ड्रामे के जाल में फंस गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि अमरीका वर्षों से अल्बानिया को एक आतंकी गुटों की जिम्मेदारी के लिए मजबूर किए हुए है, और इन आतंकियों के पूर्ण समर्थन के साथ उन्हें साइबर हमलों के लिए ट्रेनिंग देकर उन्हें इन कार्रवाइयों के लिए सुविधाएं भी उपलब्ध करा रहा है।
संयुक्त राष्ट्र संघ में ईरान के प्रतिनिधि कार्यालय ने यूएन सेक्रेटरी जनरल और अल्बानिया के प्रतिनिधि कार्यालय के नाम एक पत्र लिखकर तिराना में ईरान के कूटनीतिक केंद्रों पर सरकारी छापों और हिंसक कार्रवाइयों के कड़े शब्दों में निंदा की है। ईरान के प्रतिनिधि कार्यालय की ओर से लिखे गए पत्र में, जिसकी एक कॉपी संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के नाम भेजी गई। ये बात जोर देकर कही गई है कि 8 सितंबर 2022 को तिराना में ईरान के कोर्ट ने केंद्र और कौंसुलेट पर अल्बानिया की पुलिस की हिंसक कार्रवाइयों और संबंधित ईरानी अधिकारियों की ओर से अनुमति के बिना कूटनयिक इमारत में दाखिल होने की कड़े शब्दों में निंदा की जाती है। इस पत्र में कूटनयिक संबंधों के बारे में अंतर्राष्ट्रीय नियमों और आधारों, विशेषकर 1961 और 1963 के वियना कन्वेंशनों तथा संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा पेश किए गए प्रस्तावों का हवाला देते हुए अल्बानिया सरकार से प्रचलित कानूनों और नियमों का पूर्ण रूप से ख्याल रखने की मांग की गई है। इस पत्र में अल्बानिया सरकार से ये भी मांग की गई है कि वो नियमों का उल्लंघन करके ईरान के दूतावास और कूटनयिक केंद्रों में घुसने वालों को कानून के कटघरे में लाकर उचित कार्रवाई करे।
शनिवार की सुबह तक प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक अरबईन में शिरकत के लिए 2 करोड़ जायरीन करबला प्रांत में प्रवेश कर चुके हैं। अभी अरबईन में पूरा एक हफ्ता बाकी है। इस साल शनिवार 17 सितंबर को अरबईन है। एक अनुमान के मुताबिक इस साल 3 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के करबला पहुंचने की संभावना है। इराक के टेलीग्राम चैनल साबरीन न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना काल के 2 साल बाद इस साल इराक पहुंचने वाले जायरीन में एक अलग ही जोश और जज्बा देखा जा रहा है। इस बीच बगदाद में ईरानी राजदूत मोहम्मद काजिम आले सादिक ने इराक पहुंचने वाले ईरानी जायरीन से आह्वान किया है कि वे करबला और नजफ में अपने ठहरने की अवधि कम कर दें।
बहरीन के 14 फरवरी आंदोलन के समर्थकों ने अरबईन पैदल मार्च में भाग लेने के इच्छुक बहरीनी नागरिकों को इराक की यात्रा पर जाने से रोकने के लिए आले खलीफा शासन की कड़ी निंदा की है। आले खलीफा शासन अन्य तानाशाही शासनों की तरह इमाम खुमैन के जाने वालों को आले खलीफा शासन अन्य तानाशाही शासनों की तरह इमाम हुसैन के चाहने वालों को अरबईन पर करबला जाने से रोकने का हर प्रयास करता रहा है। बहरीन के तानाशाही शासन ने देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था के समर्थकों पर कड़ी पाबंदियां लगा रखी हैं और एक बड़ी संख्या को जेलों में बंद कर रखा है। शनिवार को प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक 14 फरवरी क्रांति के समर्थक युवाओं ने एक बयान जारी करके करबला जाने के इच्छुक बहरीनी नागरिकों पर सरकार के कड़े प्रतिबंधों की कड़ी निंदा की है और इन प्रतिबंधों को तुरंत हटाए जाने की मांग की है।
इराक के स्वयं सेवी बल हशदुशावी के जवानों ने अंबार प्रांत में दाइश के एक आतंकी हमले की योजना को विफल बना दिया है। अलमयादीन टीवी की रिपोर्ट के अनुसार इराक के अलजजीरा क्षेत्र में स्वयं सेवी बल हशदुशावी के ऑपरेशनल कमांडर ने एक बयान में कहा है कि स्वयं सेवी बल की 46वीं ब्रिगेड ने एक आतंकी हमले की योजना मिलने पर ऑपरेशन किया और आतंकी योजना को विफल बना दिया। बयान में आया है कि सूचना मिलने के बाद अल हशदुशावी के जवानों ने अंबार प्रांत के रजाजा क्षेत्र के मरुस्थली इलाके में दाइश के आतंकियों पर घात लगाकर हमला किया। स्वयं सेवी बल के बयान में आया है कि हमारे बहन के तीर्थयात्रियों और श्रद्धालुओं को विश्वास दिलाते हैं कि दुश्मन की ओर से उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचने देंगे।
सऊदी अरब और उसके सहयोगियों के 7 साल के क्रूर आक्रमण के परिणाम स्वरूप लाखों यमनी माताएं और उनके बच्चे गंभीर कुपोषण से पीड़ित हो गए हैं। यमन पर सऊदी गठबंधन के हमलों और लगाए गए परिवेशन के कारण 40 लाख बच्चे और महिलाएं कुपोषण से पीड़ित हैं। यमन के मानवाधिकार संगठन इंतजार ऑर्गेनाइजेशन ने अल मसीरा टीवी चैनल को दिए एक इंटरव्यू में बताया है। रिपोर्ट के मुताबिक यमन में 6,32,000 बच्चों की जान जोखिम में है। मानवाधिकारों पर काम कर रहे इस संगठन के आंकड़ों के मुताबिक 2015 से अब तक सऊदी गठबंधन के युद्ध के दौरान हुए प्रत्यक्ष हमलों में अब तक 3,850 लोग मारे जा चुके हैं और 4,230 घायल हुए हैं।
ये समाचार रेडियो तेहरान से प्रसारित किए जा रहे हैं। लेबनान की खुफिया एजेंसी के अधिकारियों ने बैरूत एयरपोर्ट से इसराइल की जासूस एजेंसी मोसाद के एक जासूस को गिरफ्तार किया है। इसराइली जासूसी एजेंसी मोसाद ने हालिया वर्षों में लेबनान समेत क्षेत्रीय देशों में जासूसी के लिए बड़े पैमाने पर बजट खर्च किए हैं। लेबनान के सुरक्षा सूत्रों का कहना है कि मोसाद का ये जासूस उस वक्त लेबनानी सुरक्षा प्रणाली की खुफिया इकाई के अधिकारियों की पकड़ में आया जब वे इसराइली जासूसी एजेंसियों के अधिकारियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक खातों की पड़ताल कर रहे थे। रिपोर्ट के मुताबिक ये जासूस इसराइली जासूसों से संपर्क करने और उन तक खुफिया जानकारियां पहुंचाने के लिए स्वीडन के सिम कार्डों का इस्तेमाल कर रहा था।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना इन दिनों बड़ी चर्चा में है। इससे पहले कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में यूपीए सरकार के दौर में देशभर के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना शुरू की गई थी। अब राजस्थान में कांग्रेस की राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्रों में भी मनरेगा की तर्ज पर रोजगार गारंटी योजना शुरू करने का निर्णय लिया है और इस वित्तीय वर्ष के बजट में इस योजना की घोषणा कर दी है। योजना में शहरी क्षेत्र के बेरोजगार लोगों को आजीविका अर्जन की दृष्टि से हर साल 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। इस योजना के लिए राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 800 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान रखा है। राज्य में कोविड-19 महामारी के दौरान रोजगार छीनने से जो परिवार कमजोर और असहाय हो गए हैं उन्हें भी इस योजना से बड़ा लाभ पहुंचने वाला है।
त्रिपुरा पुलिस का विशेष जांच दल बांग्लादेश से घुसपैठ के मामलों की जांच करेगा। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार को ये जानकारी दी। राज्य की राजधानी अगरतला के बाहरी इलाकों राजनगर और रामनगर में सोमवार और मंगलवार को 27 बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में ले जाने के बाद ये फैसला किया गया।
अमरीका की खुफिया एजेंसी CIA के निदेशक विलियम बर्न्स के अमरीका की खुफिया एजेंसी CIA के निदेशक विलियम बर्न्स ने दावा किया है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का यूक्रेन पर हमला करने का फैसला पूरी तरह गलत साबित हुआ है। CIA के प्रमुख ने कहा है कि यूक्रेन में रूस एक हारी हुई जंग लड़ रहा है जिसका फैसला होना केवल वक्त की बात है। विलियम बर्न्स ने कहा कि जब पुतिन ने फरवरी में हमला करने का फैसला किया तो उन्होंने यूक्रेन के संकल्प को कम करके आंका था।
पोलियो के प्रकोप के कारण न्यूयॉर्क के गवर्नर ने आपातकाल की स्थिति की घोषणा कर दी है। विदेशी सूत्रों के अनुसार पोलियो फैलने के कारण न्यूयॉर्क के गवर्नर ने आपातकाल की स्थिति की घोषणा कर दी। राज्य के स्वास्थ्य अधिकारियों को उम्मीद है कि कैथी खोचल की पोलियो आपातकाल की घोषणा से आपातकालीन कर्मचारियों, नर्सों और मेडिकल स्टोर के कर्मियों को पोलियो ड्रॉप पिलाने और ले जाने का मार्ग प्रशस्त होगा। और इसी के साथ रेडियो तेहरान से अंतर्राष्ट्रीय समाचार समाप्त हुए।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। अनमोल बातें मित्रों, कार्यक्रम अनमोल बातें में आपका स्वागत है। ईरान की इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद अली खामेनेई महिला को घर का महत्वपूर्ण सदस्य बताते हैं। वे मर्दों से महिलाओं के साथ उचित व्यवहार करने की सिफारिश करते हैं। ईश्वरीय धर्म इस्लाम में परिवार और समाज में महिला का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। महिला अपने ही घर की सरदार होती है। महिला को फूल कहा गया है। वास्तव में ये वो फूल है जिसकी सुगंध से घर और समाज महकता है। एक अच्छी महिला वास्तव में वो फूल है जिसकी सुगंध सदियों तक बाकी रह सकती है। अगर उस महिला ने समाज में कोई उल्लेखनीय कार्य किया है या समाज को योग्य एवं लायक संतान दी है तो उस महिला के कार्यों का प्रतिफल जिससे समाज और पीढ़ियां लाभ उठाती हैं। महिला वो प्राणी है जिसके बिना ना तो इंसान अस्तित्व में आ सकता है और ना ही इंसानियत। अगर महिला सही तरह से अपनी भूमिका का निर्वाह करती है तो परिवार और समाज दोनों ही इससे लाभान्वित हो सकते हैं। अगर महिला ही खराब हो जाए तो कोई भी परिवार और समाज लाभान्वित नहीं होगा। अयोग्य महिला कभी भी परिवार या समाज को खुशहाल नहीं बना सकती। महिला को योग्य बनाने के लिए उसकी प्राकृतिक आवश्यकताओं पर ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। अगर इस बिंदु पर ध्यान नहीं दिया गया तो ये उसके अधिकारों के हनन का कारण बनेगा।
महिला को शांति का प्रतीक बताया गया है। अगर कोई परिवार या समाज शांति व सुकून चाहता है तो उसे चाहिए कि वो महिला को यथासंभव शांति व सुकून प्रदान करे। महिला वो प्राणी है जो इंसान के जीवन को स्वर्ग भी बना सकती है। शारीरिक दृष्टि से महिला पुरुष से कमजोर होती है, इसलिए महिला के हवाले वो कार्य नहीं करने चाहिए जो उसकी प्राकृतिक शक्ति से मेल न खाते हों। अगर कोई इंसान महिला से वो कार्य कराता है जो कठिन है तो उसने उस पर अत्याचार किया। महिला की शारीरिक कमजोरी को इस बात का आधार नहीं बनाया जा सकता कि वो मर्द से कम है, बल्कि इस्लाम में महिला और पुरुष इंसान होने की दृष्टि से बराबर हैं, किसी को भी एक दूसरे पर वरीयता प्राप्त नहीं है। इस्लाम ने तकवे को बेहतरीन व श्रेष्ठता का मानदंड बताया है। अगर किसी महिला का तकवा पुरुष से अधिक है तो महान ईश्वर की नज़र में वो पुरुष से श्रेष्ठ है। इसके बहुत से उदाहरण मौजूद हैं। हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा एक आदर्श व महान महिला हैं जो दुनिया की समस्त महिलाओं की सरदार और सबसे श्रेष्ठ हैं। क्या कोई इंसान ये कह सकता है कि वो उनसे श्रेष्ठ है? बिल्कुल भी नहीं। इसकी एक मुख्य वजह उनका ज्ञान और तकवा है। वो सद्गुणों का स्रोत हैं। पैगंबर इस्लाम ने हज़रत फातिमा ज़हरा को अपने माँ बाप कहा है। हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के बारे में पैगंबर इस्लाम का ये कथन बहुत ही अर्थपूर्ण है। श्रोताओं, पवित्र कुरान में अच्छी और बुरी दोनों प्रकार की महिलाओं का उल्लेख किया गया है। रोचक बात यह है कि पवित्र कुरान जब अच्छे और बुरे इंसान की मिसाल पेश करना चाहता है तो इसके लिए वो महिलाओं का उदाहरण पेश करता है। सूरह तहरीम की 66वीं आयत में महान ईश्वर ये कहता है कि ईश्वर ने काफिरों के लिए नूह और लूत की पत्नियों की मिसाल दी है जो हमारे दो भले बंदों के अधीन थीं और उन्होंने उनके साथ विश्वासघात किया और उन्हें ईश्वरीय प्रकोप से कोई चीज़ ना बचा सकी और उनसे कहा गया कि नरक में दाखिल होने वालों के साथ दाखिल हो जाओ। मित्रों, कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम तक के लिए आपसे अनुमति चाहते हैं।
श्रोताओं, आपका स्वागत है कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा में। मैं हूं अहमद अब्बास।
राजनीतिक चर्चा।
कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा में हम बात करेंगे अल्बानिया की सरकार के गैर कानूनी और आपत्तिजनक रवैये की जो उसने ईरानी कूटनीतिकों के सिलसिले में अपनाया। कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा में हम कोरिया प्रायद्वीप पर एक नजर डालेंगे जहां उत्तरी कोरिया ने परमाणु शक्ति संपन्न होने का ऐलान किया है। भारत नियंत्रित कश्मीर में कांग्रेस से अलग होने वाले नेता गुलाम नबी आजाद की राजनीतिक गतिविधियां तेज होती जा रही हैं। ये विषय भी राजनीतिक चर्चा में शामिल रहेगा। तो चर्चा के विषय यही हैं। आरंभ करते हैं अल्बानिया की गैर कानूनी हरकत से। अल्बानिया की नई सरकार ने इस्लामी गणतंत्र ईरान के खिलाफ बेबुनियाद इल्जाम लगाते हुए ईरानी कूटनीतिकों के सिलसिले में गैर कानूनी रवैया अपनाया है। जायजा पेश कर रहे हैं सैयद मीसम।
संयुक्त राष्ट्र में ईरान के स्थायी मिशन ने संयुक्त राष्ट्र में अल्बानिया के स्थायी मिशन को एक पत्र लिखकर इस देश में ईरानी राजनयिक और कांसुलर सुविधाओं के खिलाफ तिराना सरकार की हिंसक कार्रवाइयों की निंदा की है। ईरानी मिशन ने इस पत्र की एक प्रति संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुजरेस को भी भेजी है। इसमें कहा गया है कि तेहरान अल्बानियाई पुलिस द्वारा तिराना स्थित अपने राजनयिक और कांसुलर सुविधाओं के खिलाफ हिंसक कार्रवाइयों की कड़ी निंदा करता है। अल्बानिया की नई सरकार ने तिराना स्थित ईरानी दूतावास के खिलाफ हिंसक कार्रवाई करके अंतर्राष्ट्रीय नियमों का खुला उल्लंघन किया है। तिराना सरकार ने ईरान विरोधी कार्रवाइयों के लिए जुलाई में हुए साइबर हमलों को बहाना बनाया है। इसराइल और अमेरिका के दबाव में आकर बिना किसी सबूत के अल्बानिया ने साइबर हमलों का आरोप ईरान पर मढ़ दिया और तेहरान के साथ कूटनीतिक संबंध तोड़ने का ऐलान कर दिया। अमेरिका ने भी अल्बानिया पर हुए साइबर हमलों को अपने सहयोगी देश पर हमला करार दे दिया और शुक्रवार को ईरान के खुफिया मंत्रालय और मंत्री पर एक बार फिर प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी। हालांकि ईरानी विदेश मंत्रालय ने अल्बानिया और अमेरिका के इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है और तिराना द्वारा राजनयिक संबंध तोड़ने के फैसले को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक अदूरदर्शी कदम बताया है। अमेरिका, नाटो और पश्चिमी देशों ने तिराना के इस शत्रुतापूर्ण कदम का खुलकर समर्थन किया है। ईरान ने पश्चिम के इस कदम को उसकी दोहरी नीतियों का एक अन्य उदाहरण करार दिया है, क्योंकि अमेरिका ईरान के परमाणु संयंत्रों समेत दुनिया भर के कई देशों पर विनाशकारी साइबर हमले कर चुका है और इन हमलों को अपने राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति के लिए सही ठहराता रहा है। लेकिन अगर खुद उस पर या अल्बानिया जैसे उसके किसी सहयोगी देश पर कोई साइबर हमला होता है तो वो तिलमिला उठता है और बदले की कार्रवाई की धमकी देता है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने पश्चिम के इस पाखंड की निंदा करते हुए कहा है कि अमेरिका और ब्रिटेन परमाणु संयंत्रों समेत ईरान के बुनियादी ढांचे पर हुए साइबर हमलों पर चुप्पी साधे रहते हैं या परोक्ष और अपरोक्ष रूप से उसका समर्थन करते रहे हैं। इसलिए उन्हें कोई अधिकार नहीं है कि बिना किसी सबूत के अल्बानिया पर हुए साइबर हमलों का आरोप ईरान पर मढ़ दें। दरअसल अपने महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर साइबर हमलों के लक्षित देशों में से एक के रूप में ईरान अन्य देशों के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर हमले को अस्वीकार करता है और उसकी निंदा करता है।
उत्तरी कोरिया ने अपने परमाणु शक्ति संपन्न देश होने का ऐलान कर दिया है। इस सिलसिले में एक कानून पर वहां के नेता ने हस्ताक्षर किए। जायजा पेश कर रहे हैं कायम रिजवी।
उत्तरी कोरिया ने एक नया कानून जारी करके ऐलान किया है कि अब वो परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बन गया है। उत्तरी कोरिया ने परमाणु हथियारों को लेकर चली आ रही अपनी नीति में बहुत बड़ा बदलाव किया है। उत्तरी कोरिया के नेता किम जोंग उन ने एक ऐसे कानून पर हस्ताक्षर कर दिए हैं जिसके आधार पर अब ये देश परमाणु शक्ति संपन्न देश के रूप में जाना जाएगा। इसी के साथ उत्तरी कोरिया की संसद ने इस देश के परमाणु संपन्न होने की पुष्टि भी कर दी है। किम जोंग उन ने ये प्रण किया है कि हमारा देश कभी भी अपने परमाणु हथियारों को नहीं छोड़ेगा। उत्तरी कोरिया की संसद और वहां के नेता के नए फैसले को दक्षिणी कोरिया के उस प्रस्ताव के उत्तर के रूप में देखा जा रहा है जिसमें प्योंगयांग से मांग की गई थी कि परमाणु शस्त्रों को त्यागने के बदले में दक्षिणी कोरिया बहुत बड़े पैमाने पर उत्तरी कोरिया में पूंजी निवेश कर सकता है। प्रस्ताव के अनुसार ये पूंजी निवेश इतने बड़े स्तर पर होगा जिससे उत्तरी कोरिया की राष्ट्रीय आय में उल्लेखनीय वृद्धि हो जाएगी। उत्तरी कोरिया ने दक्षिणी कोरिया के इस प्रस्ताव को रद्द कर दिया है क्योंकि इससे पहले भी प्योंगयांग को इस प्रकार के कई प्रस्ताव दिए जा चुके हैं। वाशिंगटन पोस्ट ने अपने एक लेख में कोरिया प्रायद्वीप की स्थिति के बारे में ये लिखा है कि अब तक उत्तरी कोरिया किसी सीमा तक परमाणु शक्ति के हिसाब से आत्मनिर्भर हो गया है। उत्तरी कोरिया के नेता ने भी कहा है कि हमने कानूनी तरीके से युद्ध के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता हासिल कर ली है जो राष्ट्रीय सुरक्षा का एक साधन है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के एक जानकार हुसैन इस बारे में कहते हैं कि कोरिया प्रायद्वीप दो भागों में बटा हुआ है, औद्योगिक कोरिया और परमाणु कोरिया। औद्योगिक अर्थात दक्षिणी कोरिया और परमाणु अर्थात उत्तरी कोरिया। दक्षिणी कोरिया उत्तरी कोरिया की आर्थिक कमियों के कारण उसको पूंजी निवेश का लालच देकर उसके परमाणु कार्यक्रम को समाप्त करवाना चाहता है। मुख्य बात यह है कि अमेरिका ने धमकियां देकर कोरिया प्रायद्वीप के लिए गंभीर सुरक्षा चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। ऐसे में उत्तरी कोरिया के पास अपनी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग नहीं बचा है। किम जोंग उन द्वारा उत्तरी कोरिया को परमाणु शक्ति संपन्न देश बनाने की घोषणा के बाद अब अमरीका के पास आए दिन परमाणु वार्ता करने की मांग पर ही विराम लग जाएगा। अमेरिका ने परमाणु मुद्दे को लेकर अब तक उत्तरी कोरिया के साथ कई चरणों की वार्ता की जो हर बार विफल रही। अमेरिका की यही विफलता उत्तरी कोरिया की प्रतिरोधक शक्ति के बढ़ने का कारण बनी है। अब से ये देश दुनिया में परमाणु शक्ति संपन्न देश के रूप में पहचाना जाएगा।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा। समाचारों से एक कदम आगे बढ़ते हुए घटनाओं की तह तक पहुंचने और विभिन्न आयामों को छूने की कोशिश। कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा।
कांग्रेस पार्टी से अलग होने वाले वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने भारत नियंत्रित कश्मीर में अपनी राजनीतिक गतिविधियां तेज कर दी हैं और वो नई पार्टी का गठन कर रहे हैं। ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता सिप्ते मोहम्मद हसन।
गुलाम नबी आजाद, जिसने हाल ही में ऑल इंडिया कांग्रेस से अपने आप को अलग किया है, ने जम्मू प्रांत के भद्रवाह में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि वो जो नया दल बनाने जा रहे हैं उसमें हर वर्ग को शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वो नई दिल्ली को ये बताना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा फौरी तौर पर वापस किया जाए, जो हकूक हमारे हैं वो भी हमें वापस मिलने चाहें। परंतु उन्होंने धारा 370 और 35A के बारे में टिप्पणी नहीं की। उन्होंने कहा कि हमारी ये कोशिश रहनी चाहिए कि पहले जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस मिलना चाहिए। यहाँ ये बात उल्लेखनीय है कि जम्मू कश्मीर कांग्रेस के दिग्गज नेताओं और हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने पहले ही गुलाम नबी आजाद के खेमे को ज्वाइन कर लिया है। ये भी अटकलें लगाई जा रही है कि गुलाम नबी आजाद को नई दिल्ली की अध्यक्षता हासिल है, परंतु उन्होंने इन आरोपों का खंडन किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में अब घुटन की स्थिति पाई जा रही थी, इसलिए उसने ऑल इंडिया कांग्रेस से त्याग पत्र दे दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने हर संभव प्रयास से कांग्रेस को एकजुट रखने का प्रयास किया, परंतु वो उसमें सफल नहीं हुए। उन्होंने कांग्रेस के मौजूदा अध्यक्ष राहुल गांधी पर तरह तरह के आरोप लगाते हुए कहा कि वो कांग्रेस को एकजुट या एक दल बनाने में कोई सहयोग फराहम नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारा ये मानना है कि जब तक कांग्रेस के जितने भी दिग्गज नेता थे उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, यही वो कारण था कि उसने इस दल से 49 वर्षीय रिश्ता समाप्त कर दिया। परंतु उन्होंने कहा कि अब भी उनके दिल में कांग्रेस के लिए नरम गोशा है और वो इससे हमदर्दी भी रखते हैं, परंतु जो स्थिति कांग्रेस पार्टी में पाई जा रही है उससे उसका दिल दुखी है। अब मजबूर होकर मैंने ये निर्णय लिया। यहाँ ये बात उल्लेखनीय है कि अभी उन्होंने नए दल का नाम नहीं लिया है, परंतु बताया जाता है कि वो 12 तारीख को गाठी का दौरा करने जा रहे हैं, जहाँ पर वो अपने नए दल का नाम भी सामने लाएंगे। यहाँ ये बात उल्लेखनीय है कि कई दिग्गज नेताओं ने पहले ही गुलाम नबी आजाद के खेमे को ज्वाइन कर लिया है। इस बीच जम्मू कश्मीर के प्रशासन ने एक बार फिर कहा है कि जम्मू कश्मीर में स्थिति सामान्य होती जा रही है, और अब चुनाव आयोग ने भी कहा है कि वो नए वर्ष यानी 2023 में जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव कराने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो वोटर लिस्ट है वो नवम्बर के महीने में सामने आएगी, उसके बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव होंगे। सिप्ते मोहम्मद हसन, रेडियो तेहरान, श्रीनगर।
और इसी के साथ राजनीतिक चर्चा का कार्यक्रम समाप्त होता है।
दोस्तों आप सुन रहे हैं रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा, जिसे लेकर उपस्थित है हमारे साथी अहमद अब्बास, और प्रस्तुत है कार्यक्रम ईरान भ्रमण।
ईरान भ्रमण।
दोस्तों कार्यक्रम ईरान भ्रमण की एक अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं मरियम मेरदादी और मोहम्मद मेदी का सलाम स्वीकार कीजिए।
ईरान के लंबे इतिहास में कई कौमों और समुदायों ने फिरोजकोह टाउन पर विशेष ध्यान दिया है। फिरोजकोह में हजारों साल से इंसान आबाद रहा है, इसी वजह से यहाँ कई ऐतिहासिक धरोहरें आज भी मौजूद हैं। फिरोजकोह में 18 ऐतिहासिक धरोहरें हैं, जिनका इतिहास प्राचीन काल और इस्लामी काल से संबंधित है। यहाँ 8 मुसाफिरखाने, 28 किले और एक ऐतिहासिक भवन है। हर साल बड़ी संख्या में लोग यहाँ के ऐतिहासिक धरोहरों को देखने के लिए इस इलाके की यात्रा करते हैं।
फिरोजकोह में कई धार्मिक स्थल हैं, जिनमें सैयद अली इमाम मूसा काजिम की संतान में से इमाम जादे इस्माइल, मासूम और सुलेमान व बीबी के मकबरों का नाम लिया जा सकता है। इन धार्मिक स्थलों की जियारत के लिए बड़ी संख्या में जायरीन यहाँ पहुँचते हैं और अद्भुत करने वाली वास्तुकला का नज़ारा करते हैं। जैसे कि हमने पिछली वाली कड़ी में उल्लेख किया था कि फिरोजकोह अल्बोर्ज पर्वत श्रृंखला के मध्य में स्थित है और यहाँ से कई नदियाँ होकर गुजरी हैं।
भौगोलिक स्थिति के कारण इस इलाके में पिछले कई हजार साल से जीवन पाया जाता है। इस इलाके में कई गांव स्थित हैं। आज हम इस इलाके के गांव की सैर करेंगे, जो फिरोजकोह से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस गांव का नाम हरांद है और ये हरांद दर्रे में स्थित है। इस गांव में सेब और दूसरे फलों के अधिक बाग पाए जाते हैं। पहाड़ की ऊंची चोटियों ने यहाँ की सुंदरता में 4 चांद लगा दिए हैं और एक जादुई मंजर पैदा कर दिया है।
हरान गांव में पत्थर, मिट्टी और ईंटों से बने हुए घर हैं। अस्कान चाय और नमरूद नदियां इस गांव से होकर गुजरती हैं। ये दोनों नदियां हबले रूद नदी से निकलती हैं, जिसकी वजह से ये पूरा इलाका काफ़ी हरा भरा है। गाँव की प्राकृतिक सुंदरता, लोगों की संस्कृति और जीवन शैली के कारण यहाँ का वातावरण बहुत आकर्षक होता है। हरांदे गांव के लोग बहुत ही मेहमान नवाज और मोहब्बती हैं। यहाँ गिला की जबान बोली जाती है। ज़्यादातर लोग पशुपालन और खेती करते हैं। इसके अलावा मछली पालन भी यहाँ के मुख्य व्यवसायों में से एक है। यहाँ का आलू भी बहुत पसंद किया जाता है।
हरांदे गांव के निकट एक बहुत ही प्राचीन गुफा है, जिसका नाम बुरनिक केव है। इस ऐतिहासिक गुफा तक पहुंचने के लिए गांव से होकर गुजरना पड़ता है। उसके बाद 6 किलोमीटर तक पहाड़ी इलाके को पार करना पड़ता है, जिसमें करीब 1.5 घंटा लग जाता है। बुरनिक केव समुद्री सतह से लगभग 2000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और उसकी लंबाई करीब 3473 मीटर है। लंबाई के लिहाज से ये ईरान की चौथी सबसे लंबी गुफा है। गुफा का मुंह लगभग 10 से 15 मीटर चौड़ा है और इसकी ऊंचाई लगभग 6 मीटर है। उसकी दीवारें पत्थर और चूने की हैं। गुफा में प्रवेश के लिए 148 सीढ़ियां नीचे की ओर उतरनी होती हैं। इंसान इस गुफा में पहुंचकर प्राकृतिक आकर्षकों को देखकर आश्चर्यचकित रह जाता है। इसके अंदर एक अहाता भी है। اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی زمانے میں یہاں انسان رہا کرتے تھے۔ ورتمان میں پرواتاروہی اس گفا کا اپیوگ پرواتری آشرے کے روپ میں کرتے ہیں۔ گفا کی دیوار اور آس پاس کے آنے پردرشیوں پر پرانی نقاشی دیکھی جا سکتی ہے اور یہ بورنی کیو کے آکرشوں میں سے ایک ہے۔ یہ گفا اپنی وشیش بھوگربھی وشیشتاؤں کے کارن ایران میں بھو پریٹن کے استھلوں میں سے ایک مانی جاتی ہے۔
ہرندے کے بعد اب ہم فیروزکو کے ایک دوسرے گاؤں خومیدے چلتے ہیں۔ یہ گاؤں واشی گھاٹی کے بعد پڑتا ہے اور یہ فیروزکو علاقے میں دوسرا سب سے مہتوپورن پریٹک ستھل ہے۔ فیروزکو کے 10 کلومیٹر بعد زریندشت گاؤں استھت ہے۔ خومیدے گاؤں تک پہنچنے کے لیے زریندشت سے ہو کر جانا پڑتا ہے۔ گاؤں تک پہنچنے کے لیے راستہ بہت ٹیڑھا میڑھا ہے اور اسی راستے میں تہران مازندران ریلوے لائن بھی استھت ہے۔ یہاں ٹرین سے پہنچنے کے لیے مہاباد اسٹیشن پر اترنا ہوگا۔ راستے میں ایک ندی پڑتی ہے جس پر ایک پرانا پل بنا ہوا ہے جس میں 9 دروازے ہیں اور یہ کریڈل آرک روپی ہے۔ اس پل نے راستے کی خوبصورتی کو اور بڑھا دیا ہے۔ اس کے علاوہ خومیدے تک پہنچنے کا راستہ ہراند گاؤں سے ہو کر جاتا ہے جس کے بارے میں ابھی ہم نے آپ کو بتایا تھا۔ ان دونوں گاؤں کے راستوں کو پیدل طے بھی کیا جا سکتا ہے۔
گاؤں پہنچنے پر سب سے پہلے سیب ناشپاتی اور آڑو کے باغوں پر نظر پڑتی ہے۔ یہاں سے حبلے ندی ہو کر گزرتی ہے جس کی وجہ سے جلوایو بہت سنتولت ہے اور چاروں طرف ہریالی ہی ہریالی ہے۔ یہ ندی خومیدے اور تہران پرانت کے اتر پورب کے باقی علاقوں سے ہو کر گزرتی ہے اور پڑوسی پرانت سمنان تک جاتی ہے۔ سنتولت جلوایو کی وجہ سے اس علاقے میں پیڑ پودے ادھک ہیں۔ یہ علاقہ پرندوں اور جنگلی جانوروں کے رہنے کے لیے اپیوکت استھان ہے۔ یہاں کئی طرح کے جانور پائے جاتے ہیں جیسے لومڑی، بھیڑیے اور خرگوش، باز اور انیہ چھوٹے پکشی اور جانور۔
خومیدے گاؤں کا اتہاس ہزاروں سال پرانا ہے۔ گاؤں کے پورب میں استھت پہاڑ کے آنچل میں پرانے کھنڈروں کے اوشیش موجود ہیں۔ فیروزکو کے دوسرے گاؤں کی طرح خومیدے گاؤں کے لوگ بھی مازندرانی لہجے میں بات کرتے ہیں۔ تہران پرانت کی سیما مازندران پرانت سے لگتی ہے اور پچھلے ہزاروں سال سے مازندران کے قبیلے فیروزکو کے علاقے میں بستے ہیں۔ ہران پرانت کی سیما مازندران پرانت سے لگتی ہے اور پچھلے ہزاروں سال سے مازندران کے قبیلے فیروزکو کے علاقے میں بستے ہیں۔
خومیدے گاؤں کا اصلی آکرشن پانی کا جھرنا اور پراکرتک پھول ہیں جو گاؤں کے نکٹ استھت ہے۔ اس کا پانی ٹھنڈا اور اپچارک ہے جسے خومگے یا بی خامو کہا جاتا ہے۔ جھرنے کے پاس ایک پراکرتک پل ہے جس کا پانی جھرنے سے آتا ہے۔ اس میں پانی میں رہنے والے کئی جانور رہتے ہیں۔ اس پل کو تیار کرنے میں باہر سے کئی سامگری کا پریوگ نہیں کیا گیا ہے بلکہ یہ ایک طرح سے سمے بیتنے کے ساتھ ساتھ یہ خود بن گیا ہے۔ گرمیوں کے گرم دنوں میں بھی اس پل کا پانی شیتل اور ٹھنڈا رہتا ہے۔ اسی وجہ سے گرمیوں کے موسم میں یہاں بڑی سنکھیا میں پریٹک پہنچتے ہیں۔
خومیدے جھرنے کا اتہاس بہت پرانا ہے۔ اس علاقے میں ورشوں سے لوگ رہتے رہے ہیں اور یہاں کی نعمتوں کا اپیوگ کرتے رہے ہیں۔ اس جھرنے کے پانی میں کئی کھنج اپچار گن ہیں۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ اس جھرنے کا پانی ہڈیوں کے درد، جوڑوں کے روگ اور توچہ کے روگوں تتھا پیلیا کے اپچار کے لیے پربھاوی ہوتا ہے۔ تو دوستو، کارکرم کا سمے یہیں پر سماپت ہوتا ہے۔ انومتی دیجیے۔
दोस्तों आप सुन रहे हैं रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ईरान भ्रमण, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम उज्जवल भविष्य।
उज्जवल भविष्य।
दोस्तों कार्यक्रम उज्ज्वल भविष्य के एक अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित है मरियम मेहरदादी और सैयद मिसम का सलाम स्वीकार कीजिए।
दोस्तों इससे पहले वाली कड़ी में हमने बताया था कि ईरान की इस्लामी क्रांति अपनी धार्मिक पहचान और विचारधारा के कारण एक राजनीतिक क्रांति से ज्यादा एक सांस्कृतिक क्रांति है। इस्लामी क्रांति ने देश में शासन व्यवस्था में परिवर्तन के अलावा सांस्कृतिक माहौल में बदलाव किया। फिल्मों का ताना बाना समाज में मौजूद वास्तविकताओं के आधार पर ही बुना जाता है और ये आधुनिक दौर में मीडिया के सबसे प्रभावी रूपों में से एक है। क्रांति के बाद के सिनेमा में समाज की वर्तमान घटनाओं, विचारों और भावनाओं ने लोगों को समाज की उस संरचना से जोड़ने या प्रेरित करने का काम किया जिसमें वे रहते हैं।
क्रांति के बाद दो कारणों से सिनेमा राजनीति से जुड़ा हुआ है। एक और 1979 की क्रांति धार्मिक सिद्धांतों पर आधारित थी, तो इसलिए सिनेमा की नई परिभाषा गढ़ी गई। इसलिए इस नई परिभाषा में धार्मिक और राष्ट्रीय मूल्यों को प्रथम स्थान दिया गया। दूसरी ओर 1980 में ईरान पर सद्दाम के हमले के बाद 8 साल तक जारी रहने वाली जंग ने ईरानी सिनेमा में एक नया अध्याय खोल दिया और इसे पवित्र रक्षा सिनेमा नामक एक नई राजनीति और क्रांतिकारी शैली का नाम दिया गया। एक शक्तिशाली और प्रभावशाली शैली जो अपनी वैचारिक प्रकृति के कारण राजनीतिक सांस्कृतिक बहस का केंद्र बन गई और राष्ट्रीय और धार्मिक सिनेमा के उदाहरण के रूप में ईरानी सिनेमा का प्रतीक बन गई।
आज की ईरानी फिल्में शानदार, कलात्मक और पेशेवर हैं। इस्लामी क्रांति के सिनेमा ने ईरानी सिनेमा की शैली में विविधता उत्पन्न कर दी है। सिमेंटिक, राजनीतिक, सामाजिक और पवित्र रक्षा जैसी कई शैलियां दुनिया में ईरानी सिनेमा की विशेषताएं हैं। ईरानी सिनेमा में राजनीतिक शैली का प्रवेश इस्लामी क्रांति के कारण हुआ है। इस्लामी क्रांति से पहले मोहम्मद रजा पहलवी के तानाशाही शासन ने फिल्म निर्माताओं को राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी थी।
इस्लामी क्रांति ने राजनीति के अछूते विषय को सबसे प्रभावशाली विषयों में बदल दिया। इस्लामी क्रांति के नेताओं का मानना है कि सिनेमा और निर्माताओं का एक उच्च स्थान है, इसलिए उन्हें देश की प्रगति की कुंजी के रूप में याद किया जाता है। जबकि क्रांति से पहले सिनेमा भ्रष्टाचार का केंद्र था और वो समाज में अनैतिकता को बढ़ावा दे रहा था। इस्लामी क्रांति ने ईरानी सिनेमा के गठन और उसे दिशा प्रदान करने में अहम योगदान दिया है और सिनेमा के लिए एक नई भूमिका तैयार की है। एक वाक्य में हम कह सकते हैं कि इस्लामी क्रांति ने ईरानी सिनेमा को शुद्ध किया है।
क्रांति से पहले के 45 वर्षों में ईरान में 1141 फिल्में बनाई गईं, जबकि क्रांति के बाद के 43 वर्षों में देश में लगभग 3000 फिल्मों का निर्माण किया गया, यानी ईरान में बनने वाली फिल्मों की संख्या 2 गुना हो गई। क्रांति से पहले निर्देशकों की संख्या 261 थी, जो क्रांति के बाद बढ़कर 716 हो गई। क्रांति से पहले सिनेमा प्रकाशनों और पत्रिकाओं की संख्या 42 थी, जिनका प्रकाशन क्रांति से पहले बंद हो गया था, जबकि आज ये संख्या 55 तक पहुंच गई है। क्रांति से पहले ईरान में केवल 3 सिनेमाई संगठन थे, जो क्रांति के बाद बढ़कर 30 हो गए हैं। क्रांति से पहले पूरे ईरान में 437 सिनेमाघर थे, लेकिन क्रांति के आंदोलन और घटनाक्रमों के कारण उनकी एक बड़ी संख्या अप्रचलित हो गई थी और सिर्फ 99 सिनेमाघर ही बाकी रह गए थे। लेकिन इस्लामी क्रांति की शुरुआत के बाद से सिनेमाघरों की संख्या 408 तक पहुंच गई है।
اسلامی کرانتی سے پہلے صرف 5 یونیورسٹیوں اور سنستھانوں میں سینما کے کھیتر میں پڑھائی ہوتی تھی، جبکہ کرانتی کے بعد سینما کے کھیتر میں 11 کلا سنستھان، 15 شکشا کیندر اور 11 یونیورسٹیوں میں اس وشے کو پڑھایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ تہران اور انیہ شہروں میں 159 نجی اسکول سینما پریمیوں کو پرشکشت کرتے ہیں۔ اسلامی کرانتی سے پہلے لگ بھگ 147 سینما سناتک تھے، جبکہ اسلامی کرانتی کے بعد یہ سنکھیا بڑھ کر 1.5 لاکھ ہو گئی ہے۔ کرانتی سے پہلے سینما کے کھیتر میں کیول 235 پستکیں ہی پرکاشت ہوئی تھیں، حالانکہ اس کھیتر میں 2018 تک پرکاشت پستکوں کی سنکھیا 1700 تک پہنچ گئی ہے۔ دوسرے شبدوں میں کرانتی کے بعد سے اس کھیتر میں پرکاشت پستکوں کی سنکھیا میں 7 گنا وردھی ہوئی ہے۔
کرانتی کے بعد ایران میں سینما کے کھیتر میں گھٹنے والی مہتوپورن گھٹناؤں میں سے ایک مہیلا فلم نردیشکوں کا ادے ہے۔ کرانتی سے پہلے کوئی مہیلا نردیشک نہیں تھی، جبکہ کرانتی کے بعد یہ سنکھیا بڑھ کر 25 ہو گئی۔ اسلامی کرانتی سے پہلے سینما ادیوگ نے درشکوں کو آکرشت کرنے کے لیے مہیلا ابھینیتریوں کو ایک اپکرن کے روپ میں استعمال کیا۔ کرانتی سے پہلے سینما ادیوگ میں مہیلاؤں کا چین ابھینے کوشل پر نہیں بلکہ گائن اور نرتیہ کے کوشل پر ہوتا تھا۔
کرانتی سے پہلے سینما میں مہیلاؤں کو مکھیہ روپ سے ویشیا اور نرتیہ کی بھومیکا دی جاتی تھی۔ کرانتی سے پہلے سینما میں مہیلاؤں کا غلط چرتر پیش کیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ سینما ادیوگ کے اشلیل ماحول نے مہیلاؤں کے بیچ سینما کو الوکپریہ بنا دیا تھا۔ فلموں کی سامگری ایسی تھی کہ مہیلائیں فلمیں نہیں دیکھنا چاہتی تھیں۔ فلموں کے نرمان، لیکھن اور نردیشن جیسی پرمکھ بھومیکاؤں میں مہیلاؤں کی کوئی بھومیکا نہیں تھی۔ کرانتی کے بعد فلم فیسٹیولوں میں جج کی بھومیکا نبھانے، فلم سنستھانوں کا پربندھن کرنے اور فلم ادیوگ کو ایک نئی پہچان دینے میں مہیلاؤں نے پربھاوشالی بھومیکا نبھائی۔ ورتمان میں سینما کے کھیتر میں ایرانی ششی کیندروں کی کھمتا کا 50% مہیلا چھاتروں کا ہے۔ واستو میں کرانتی کے بعد مہیلاؤں کو سینما میں صحیح ستھان پراپت ہوا۔
ایرانی سینما کے اتہاس میں گھٹنے والی ایک مہتوپورن گھٹنا یدھ کے وشے کا سینما میں شامل ہونا تھا۔ 1980 میں تھوپے گئے یدھ کے ساتھ سینما میں پوتر پرتیرکشا کے نام سے ایک نئی شیلی کا ادے ہوا۔ اسلامی کرانتی کی سفلتا کے بعد یدھ کے وشے پر بننے والی فلموں کی تکنیک نے ایرانی سینما میں پرویش کیا۔ یدھ کے وشے پر بننے والی 317 فلمیں اسلامی کرانتی کے بعد سینما کو ملنے والا ایک وشیش سمان ہے۔ پوتر پرتیرکشا کے وشے پر بننے والی فلموں کے کارن ایرانی سینما نے ایک ویشوک پہچان حاصل کی۔ اسلامی کرانتی نے اسکولوں، مسجدوں اور گاؤں میں فلموں کے دروازے کھول دیے اور فلمیں دیکھنا پریواروں کے سانسکرتک پیکج میں شامل ہو گیا۔
اسلامی کرانتی سے پہلے تک دیش میں ڈاکیومنٹری فلمیں بنانے والے صرف 21 نردیشک تھے، لیکن کرانتی کے بعد ان کی سنکھیا میں 40% کی بڑھوتری ہوئی اور یہ 850 تک پہنچ گئی۔ اب تک اسلامی کرانتی نے شکشا اور پرشکشن کیندروں میں 12,690 چھاتروں کو ڈاکیومنٹری فلم بنانے کے کھیتر میں پرشکشن دیا ہے۔ کرانتی سے پہلے ایران میں فلم کی پیشور آلوچنا اور سمیکشا کا کوئی اتا پتا نہیں تھا، لیکن کرانتی کے بعد اس کا ایک نیا ادھیائے کھل گیا۔ اسلامی کرانتی کے بعد سینما کریٹکس ایسوسی ایشن کی ستھاپنا ہوئی۔ اسلامی کرانتی سے پہلے دیش میں کیول 9 گھریلو اور انتراشٹری فلم سماروہ آیوجت کیے جاتے تھے، جن کی سنکھیا 2018 تک 35 تک پہنچ گئی ہے۔
اسلامی کرانتی کے بعد کلا اور سنسکرتی کے کھیتر میں ہونے والا ایک مہتوپورن بدلاؤ تھیٹر سے سمبندھت ہے۔ اسلامی کرانتی نے تھیٹر کو وناش اور پتن سے مکتی دلائی اور اسے ایک اچھ استھان پردان کیا۔ تھیٹر کے کھیتر میں अश्लीलता इस हद तक बढ़ गई थी कि लोगों के व्यापक पैमाने पर रोस्ट से बचने के लिए खुफिया एजेंसी सावाक ने शाह को चेतावनी दी थी कि इस्लामी क्रांति ने इसी थिएटर को तबाही और बर्बादी से बचा लिया। ईरान में थिएटरों की संख्या 1978 में 80 थी, जिसमें क्रांति के बाद 13 गुना का इजाफा हुआ और ये अब 1050 हो गई है। स्क्रिप्ट और डायलॉग के क्षेत्रों से विशेष थिएटर प्रकाशनों में 20 गुना वृद्धि हुई है, जो क्रांतिकारी कला के संदर्भ में स्वतंत्रता का स्पष्ट संकेत है। दमनकारी शासन की तुलना में थिएटरों में नाटकों की प्रस्तुति में 140 गुना वृद्धि हुई, जो 2018 में 6930 नाटकों तक पहुंच गई। ये ईरानी थिएटर में आज़ादी, कलाकारों और जनता की सक्रिय उपस्थिति का प्रतीक है। हजारों अपंजीकृत थिएटर कलाकारों के अलावा क्रांति के बाद रंगमंच कलाकारों की संख्या में 10 गुना वृद्धि हुई है। आज पूरे ईरान में 20,000 पेशेवर थिएटर कलाकार काम कर रहे हैं। इस्लामी क्रांति के बाद थिएटर दर्शकों की संख्या 1,000 गुना से अधिक बढ़ गई है। तो दोस्तों, इसी के साथ कार्यक्रम का समय समाप्त हुआ। अब हमें इजाजत दीजिए।
दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा और अब समय हो चुका है आज के मुख्य समाचारों के सारांश का। ईरान का कहना है कि अल्बानिया अमरीकी ड्रामे का मोहरा बना हुआ है। बहरैनी नागरिकों को अरबईन मिलन मार्च में जाने की इजाजत नहीं मिल रही है। अरबईन मिलन मार्च पर हमले की कोशिश को सेना ने नाकाम बना दिया है और राजस्थान के मुख्यमंत्री की इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना चर्चे में है। तो दोस्तों, हमें आशा है कि हमारा ये प्रसारण भी आपको सदा की भांति पसंद आया होगा। कार्यक्रमों के बारे में अपने विचारों से हमें अवश्य अवगत कराइएगा। हमारा ईमेल आईडी है hindi@ws.irib.ir। तो इसी के साथ अख्तर अब्बास और साथियों को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़।